તારીખ 5/6/1996 ના દિવસે માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વચર્ચા.
प्रति दासों को भाव आता है और सत्पुरुष में परम प्रेमार्पण होने से जीव के सर्वदोष तल जाते उतर सकते हैं और इसके सिवा अनंत उपाय करने से भी दोष तल सकता नहीं है. यही बीज भूल रह गई है, इसमें ऐसा क्या रहस्य है? इस विषय विस्तार से समझाइए. ऐसा क्या प्रकार के दोष है, ऐसे किस प्रकार के दोष है जो जीव सत्पुरुष के प्रति सर्वभाव से अर्पण हुए बिना काल नहीं सकता, ये भी समझाना. इसमें जो बीजभूत भूल कही है उसमें वो बात है कि एक घड़ा ऊंधा पड़ा है, इसमें पानी तो नहीं भर सकते, उल्टे घड़े में तो पानी भरा नहीं जाता. वो पानी भरने के लिए उसको सुलटा होना जरूरी है. कोई घड़ा उल्टा पड़ा है उसका सुलटा करेंगे तो ऐसे सुलटा होगा? इसके सिवा कोई दूसरा इलाज है क्या? तो उसका विज्ञान क्या हुआ? एक एक डिग्री वो सुलटा हो जा रहा है. उल्टा सुलटा में 180 डिग्री है, सुनता होने एक डिग्री होकर के हो गया या वैसे ही हो जाएगा? कोई कितना भी चतुर हो, अक्लमंद हो, लेकिन दूसरी तरीके से उसको सीधा नहीं कर सकता. वैसे ही इस जीव अनादि से उल्टा पड़ा है, अनादि से ऊंधा पड़ा है. उनका सीधा होने में वो सत्पुरुष के पहले आड़ा होता है फिर सीधा होता है. ये इसका विज्ञान है, बात तो वैज्ञानिक है. हम अनजाने शहर में जाते हैं, हमारे पास पता लिखा हुआ है, हमको पूछना पड़ेगा कि इस जगह पर कहां से जाया जाता है. क्यों? कि कितने मोड़ हैं, जगह जगह पूछना पड़ेगा. कोई समझा देगा पहले इधर जाना, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर उधर. वो तो पूछना ही पड़ेगा, उसी जगह पर जाकर के पूछना पड़ेगा. हर मोड़ पर पूछना पड़ेगा, वरना गलत मोड़ पर चला जाएगा. और एक जगह कितने मोड़ निकलते हैं, कभी दो रास्ता, कोई चार रास्ता, कोई पांच रास्ता, कोई सात रास्ता, कैसे पता चले? स्थूल बात में भी बिना पूछे नहीं चलता। तो कितना स्थूल है ये तो अंतर की सूक्ष्म गहराई का विषय है। जीव को अनेक प्रकार के चित्र विचित्र भाव होते हैं कि नहीं होते, न इसका विज्ञान जानते हैं, न कारण को जानते हैं, न साधन को जानते हैं। अपना कल्याण के विषय में बिल्कुल अनजाना है। तो इस विषय में जो ज्ञानी पुरुष है, जो दूसरे ज्ञानी से वो भी ज्ञानी हुए, वैसे ज्ञानी नहीं हुए अपने आप, वो भी अपने आप नहीं हुए हैं। तो गुरु परंपरा अनादि से चली आ रही है, इसलिए आगमों में ठाम ठाम गुरु महिमा बताई है। तो अनुभव से बात की है, अपना अनुभव से ही बात की है कि खुद पहले अनजाना था, फिर कैसे आगे बढ़ा। ये कुमार घड़ा बनाता है कि नहीं, ऊपर से भी ठपकारता है, अंदर से भी ठपकारता है, तभी तो घाट होता है उसका, ऐसे नहीं बनता। ऐसे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पूरा संसार से पार उतरना है, कोई मामूली काम तो नहीं है। एक चीज को बनाने में कितनी टेक्निकल प्रोसेस होती है। हाँ, एक गाड़ी बनती है, कितने पार्ट्स हैं अंदर, फिर भले चालू घुमाते ही काम होता है, लेकिन अंदर कितनी मशीनरी है, क्या क्या प्रोसेस है। तो बाहर में स्थूल विषय में इतनी लंबी चौड़ी बात है, उतनी तो लंबी चौड़ी नहीं है, फिर भी जो भी है बहुत सूक्ष्म है। और जीव को खुद को पता नहीं चलता, तो इसके लिए तो जरूरी होता है कि वो
दिमाग का पुर्जा चलाना जी, दिमाग का पुर्जा चलाना पड़ता।
हाँ,
मोटर में लोगों का पुर्जा, इसमें दिमाग का।
हाँ, दिमाग का पुर्जा चलाना। इसलिए तो जानने वाले को पूछे नहीं, पर पूछा नहीं अनंत काल से, अनंत काल से बिना पूछे स्वच्छंद से अपने आप आगे चलने का अनंत बार प्रयास किया, कभी मान लिया कि त्याग कर लूं, कभी मान लिया कि शास्त्र पढ़ लूं, कभी मान लिया कि पूजा भक्ति कर लूं, कभी सोच लिया कि दान दे दूं, काम नहीं हुआ। पुण्य बंद किया, पुण्य का उदय आया, उदय भोगने में पाप किया, ऐसे पुण्य पाप के चक्कर में अनंत काल बीता है। इस चक्कर में से बाहर निकलने की विधि है वो ज्ञानी पुरुष जानते हैं। और कौन कितने चक्कर में है, कैसे चक्कर में है, वो भी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। उसको कहां से बाहर ले जाना, कैसे बाहर निकालना, वो भी वो जानते हैं। खुद नहीं जानता कि मां मैं कहां कितने चक्कर में फंसा हूं, मेरी योग्यता योग्यता क्या है, मैं कैसे निकलूंगा, वो खुद नहीं जानता। वो जानता है तो बताएगा, चलना तो खुद को है, वो रास्ता बताएगा कि भाई ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, निकल जाएगा। इस तरह से निकल सकता है। ऐसा कौन सा प्रकार का दोष है जो शत्रु के प्रति सर्वभाव अर्पण किए बिना टलने, ये स्वच्छंद नाम का दोष है। सभी दोष स्वच्छंद में फिर समाता है, ये सभी दोष को उत्पन्न करने का बहुत बड़ा महादोष है। प्रश्न है, मुमुक्षु जीव जब अपना स्वरूप के प्रति आगे बढ़ता है तब अपना स्वरूप की महिमा में डूब जाता है और स्वरूप महिमा को गौण करता है, स्वरूप महिमा की अवस्था को, चलती हुई अवस्था को भी गौण करता है, स्वरूप को ही मुख्य करता है, मुख्य करने वाले अवस्था को मुख्य नहीं करता है। फिर भी स्वरूप महिमा और परिणाम की महिमा में किस प्रकार की भूल रह जाती है? परिणाम की महिमा में तो बड़ी भूल है, स्वरूप के आगे परिणाम क्या चीज है? देखिए, स्वरूप में से केवल ज्ञान जैसी महान अवस्था कितनी पैदा होती है? अनंत केवल ज्ञान के पर्याय पैदा होगी, अनंत काल तक होती ही रहेगी। स्वरूप फिर भी उतना का उतना रहेगा, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इतना स्वरूप महान है, उस जिसके आगे केवल ज्ञान जैसी पर्याय अनंत में भाग में है। कितने भाग में है? अनंत में भाग में है। तो फिर साधक दशा तो केवल ज्ञान से भी अनंत में भाग में है, और मुमुक्षु दशा तो बहुत नीचे के दरजे की है। जो स्वरूप की महिमा करते हैं वो तो मुमुक्षु की दशा का है, तो उस पर वजन गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्वरूप पर वजन नहीं रहा। मुमुक्षु की भूमिका में स्वरूप महिमा होती है, यथार्थ होती है, तो महिमा करने वाले पर्याय पर वजन नहीं रहता बिल्कुल। अगर वजन रहता है तो स्वरूप महिमा यथार्थ प्रकार से नहीं चल रही है, एक विकल्प चल रहा है, क्योंकि दो बात में उल्टी सुल्टी परिस्थिति पैदा होती है। विकल्प से भी स्वरूप की महिमा होती है और ज्ञान से भी स्वरूप की महिमा होती है। ज्ञान में महिमावंत स्वरूप का प्रतिभास आता है, फोटो पड़ता है, उसमें स्वरूप के आगे महिमा करने वाली अवस्था का कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। ये कंपैरेटिव नॉलेज है, इसलिए ऐसा होता ही नहीं। होता है इसका मतलब कि यथार्थ रूप से अभी ये महिमा नहीं हो रहा है, विकल्प में थोड़ा हो रहा है, ये बात है। इसलिए यहां जो प्रश्न में लिखा है कि स्वरूप महिमा को गौण करता है फिर भी स्वरूप महिमा और परिणाम की महिमा में किस प्रकार की भूल, दोनों अलग अलग बात है। स्वरूप महिमा में भूल नहीं होती है, परिणाम की महिमा में भूल है। वो बात बराबर समझ में होनी चाहिए कि इसलिए परिणाम पर जहाँ तक वजन रहता है उसमें परिणाम की अधिकाई हो गई। जो परिणाम स्वरूप की महिमा करता है वो स्वरूप की सेवा करता है, वो तो सेवक हो गया। सेवक पर वजन कहां से आएगा? राजा और सेवक दोनों खड़ा है, राजा का आदर करेगा या सेवक का करेगा? अगर सेवक का करता है तो वो राजा को नहीं पहचानता, राजा को पहचानने वाला सेवक का आदर नहीं कर सकता, वो राजा का ही आदर करेगा।
राजा का आदर नहीं करे और सेवा का करे तो दंड मिलता है।
दंड मिलता है बिल्कुल, हाँ दंड मिलेगा। दंड मिलेगा, ठीक बात है, आप ऐसा ही होगा। बड़ी भूल है इसमें, राजा का अनादर है ना, इसलिए दंड होता है।
नहीं,
इसमें क्या है कि विकल्प तो चलता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ,
स्वरूप महिमा
है। दो बातें एक साथ नहीं चलती, स्वरूप महिमा चलती है या परिणाम की महिमा नहीं, परिणाम की महिमा है या स्वरूप की महिमा नहीं। शास्त्रों में अध्यात्म पर्यायों की महिमा गाई है, प्रश्न खड़ा हो सकता है क्यों गाई है? ये प्रश्न खड़ा होता है। सम्यक दर्शन की महिमा किया, मुनि दशा की महिमा किया, केवल ज्ञान की महिमा किया, यानी स्वरूप की महिमा दर्शाने के लिए किया। जैसे हम ऐसा कहें कि भाई वो बहुत श्रीमंत आदमी है जिसके वहां झाड़ू मारने वाली अपनी गाड़ी लेके आती है, वो भी 5-10 लाख की गाड़ी लेके आती है। झाड़ू वाली को इतना पैसा मिलता है कि उसके पास 10 लाख की गाड़ी है तो उसके सेठ के पास कितने पैसे होगा? तो वो झाड़ू वाले की महिमा नहीं है उसमें, सेठ की श्रीमंता ही बताने की बात है। तो अध्यात्म पर्यायों की महिमा भी स्वरूप की महिमा बताने के कारण से हुई है, क्योंकि स्वरूप इतना महान है कि उसको बताना वो वाणी का सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरे दूसरे ढंग से बताते हैं स्वरूप की महिमा। इसका मतलब वो नहीं कि उसकी महिमा करते हैं। नौकर की संपत्ति बताई वो सेठ की संपत्ति गिनाने के लिए, नौकर की संपत्ति गिनाने के लिए वो बात नहीं है। इस तरह से ये बात चली है, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो पर्यायों की महिमा में चढ़ जाते हैं, क्योंकि अनादि से पर्याय दृष्टि है ही जीव की, ये भूल हो जाती है। इस तरह से होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सत्पुरुष की पहचान के पहले यथार्थ प्रकार से मन का स्थापन और यथार्थ समर्पण हो सकता है क्या? प्रश्न वो है कि सत्पुरुष की पहचान होने के पहले मुमुक्षु का मन स्वरूप, मन का स्थापन सत्पुरुष में हो सकता है, क्योंकि एक पत्र में आया है कृपालु देव के कि सत्पुरुष के चरण में मन को स्थापित कर देना, वरना मन इधर उधर भागा दौड़ी किए बिना नहीं रहेगा। प्रश्न उठाया है कि पहचान के पहले ऐसा हो सकता है, यानी यथार्थ समर्पण हो सकता है, तो पहचान से जो होता है वैसा तो नहीं होता। पहचान से ये जो दोनों बात होती है वैसा तो नहीं होता, किंतु एक भेद है। किसी जीव कभी कभी कुछ एक जीव को निष्काम भक्ति आती है। निष्काम भक्ति कैसे आती है कि इनके प्रत्यक्ष योग से या वचन योग से, या तो प्रत्यक्ष योग मिला हो, संयोग मिला हो, या प्रत्यक्ष नहीं हुए तो इनका वचन मुखमणि वैसी के वैसे रह गई हो। उस वचन योग से जिसके आत्मा पर कुछ ऐसी असर हुई हो, इस प्रकार की हुई हो कि मैं संसार फिर जाऊंगा, ये अपूर्व वाणी है, कहने वाले के प्रति अपूर्व भाव आता है और उनको लगता है कि मैं बच गया इस संसार परिभ्रमण से, मैं भी बच गया। तो बहुत निष्काम भक्ति आती है, पहचान नहीं होती है, लेकिन निष्काम भक्ति आ सकती है। जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है वो संसार से निकल जाता है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा कभी कभी बनता है, वो संभवित है, पर निष्काम भक्ति आती है। तो ऐसे जीव को इसका मन इधर उधर नहीं जाता, फिर इसका मन इधर उधर नहीं जाता, तो निष्काम भक्ति में वो जीव डूबा हुआ रहता है। और इनका समर्पण भी सर्वभाव समर्पण हो जाता है। ऐसा कभी व्यक्तिगत रूप से बनता है, एक भेद है ऐसा बस। तो उनको पहचान भी कराएगा और संसार से पार भी हो जाएगा वो, और अंदर से उसका आत्मा उसकी गवाही पूरता है, गवाही देता है कि तो बस अब मैं तिर जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है, लगता है कि मैं अब तिर गया। वो तो ऐसी ही बात है कि घर से कोई निकलता है, सब कहते हैं कि भाई ये पधारी पधारी आए, हमारा आप जो आप जो आपने गुजराती माना से करता है। हाँ पड़ोस में कोई पूछेगा कि किधर गए, आपकी गाड़ी तो अभी स्टेशन भी नहीं पहुंची, लेकिन बोलेंगे क्या कि मुंबई गए, अभी तो मुंबई की गाड़ी स्टेशन में नहीं आई और निकली, घर से निकली गाड़ी स्टेशन नहीं पहुंची, लेकिन जब विश्वास है कि निर्विघ्न रूप से मुंबई पहुंचने वाले हैं, शंका नहीं हुई कि बीच में एक्सीडेंट होगा, वो शंका भी नहीं आई, तो क्या बोलेंगे? वो तो मुंबई गए। ऐसे जब आत्मविश्वास होता है तब तिर जाएगा तो भविष्य में, लेकिन लगता है कि मैं तिर गया। कोई इस प्रकार की बातें हैं परमार्थ की, भगवान के घर की बातें हैं, कोई ऐसे स्तर की बात है कि जब सुनने वाले को अंदर से रुचि होती है तब उसको अपने मुक्ति का भणकार, भणकारी कहते हैं हिंदी में, मुक्ति के भणकार अंदर से आता है कि मैं तिर गया, अब मैं तिर गया, ये बात आती है, निशंकता आती आ जाती है। ऐसा योग्यता का प्रकार भी होता है मुमुक्षु की भूमिका में।
अपनी कल्पना से ऐसा जान लेता है
जो भावावेश है और एक सही है, उसमें अंतर क्या, वो बात समझना चाहिए। जब उसका समाधान हो जाएगा इस शंका का, भावावेश क्या चीज है, कि दूध के उफान की तरफ आवेश आता है, बैठ जाता है, पर यथार्थ होता है तो दिन प्रतिदिन व्यक्तिगत होता रहता है। दो में ये अंतर है। तो भावावेश है या यथार्थ भाव आया, इसका पता आगे जाते ही चल जाता है। ऐसी बात, भावावेश कहो भावुकता कहो, होता है लेकिन वो लंबा नहीं चलता है, टेम्पररी होता है। भावावेश का आधार राग है और यथार्थ भाव का आधार अंदर में से अपनी आत्मा है, वो आत्मा में से आवाज निकली। दो बात अलग अलग है। राग है वो मलिन भाव है और आत्मा है वो परिपूर्ण पवित्रता का पिंड है। आत्मा में से जो आवाज निकलती है वो तो इसका भव्यत्व पारिणामिक भाव में से निकली हुई बात है, भव्यत्व बोलता है और ये भव्यत्व का परिपाक समीप में आ गया है। दो बात अलग अलग होती है। हाँ होता है। सत्पुरुष में परम दैन्यत्व, उसमें ऐसा कौन सा रहस्य है कि जो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा और पदार्थ का निर्णय, ये दोनों कारणों को आसानी से नाश कर देता है। सत्पुरुष में परम दैनित्व और परम विनय आने से मति निर्मल होती है। क्यों? कि निर्मोही पुरुष का विनय, विनय भाव हुआ है तो दर्शन में पतला हो जाएगा, दर्शन में गल जाएगा, दर्शन में गलते ही ज्ञान में मत ज्ञान में निर्मलता आ जाएगी। तो जो ज्ञान में अपना स्वरूप मौजूद है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान में मौजूद है, तो क्यों नहीं दिखता था? कि मति मलिन थी इसलिए नहीं दिखता था। पवित्र पदार्थ को देखने के लिए नजर भी पवित्र चाहिए। मैली दृष्टि से पवित्र पदार्थ देखा नहीं जाता, इसलिए तो सत्पुरुष की पहचान में भी निर्मलता होती है, योग्यता होती है तो पहचान होती है। ये जिसकी आंख में दोष है वो जोरी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तो सूक्ष्म नजर चाहिए। बहुत पतला दाग हो भी वो देख सके, ऐसी उनकी नजर चाहिए, साफ साफ नजर वालों का काम है। वैसे ही सत्पुरुष की पहचान, स्वरूप की पहचान, उसमें भी योग्यता तो चाहिए। वो योग्यता उसके बहुमान से आती है, परम विनय से आती है। इसलिए उसका अल्प सुखेच्छा का अभिप्राय भी टल जाता है और स्वरूप की पहचान भी उसको आ जाती है, क्योंकि पहचान पूर्वक परम विनय आया है। तो पहचान में सत्पुरुष का अंतर देखा है, अंतर में विराजमान आत्मस्वरूप भी देखा है, परमात्म तत्व का भी दर्शन। जिससे उनको चलते फिरते सिद्ध लगते हैं। स्वरूपाकार जो परिणाम है वो स्वरूप की जाति का है, पर स्वरूप तो सिद्ध समान है ही। सिद्ध होते हैं वो हलते फिरते नहीं है, लेकिन वो चलते फिरते हैं तो चलते फिरते सिद्ध दिखते हैं। ऐसे तो स्वाध्याय में चली थी बात। सत्पुरुष में ऐसा तो किस प्रकार का अचल प्रेम होता है जो पूरा संसार को गौण कर देता है। वो तो प्रेम होता है, उसको पूछो, क्योंकि ये चीज फीलिंग की होती है, अनुभव करने की होती है, बातें बनाने की तो नहीं होती है। अचल प्रेम, अचल प्रेम मैंने क्या कि किसी भी प्रकार के उदय से जो चलित नहीं होता उसको अचल प्रेम कहा जाता है। किसी भी प्रकार के उदय आ जाए, लेकिन जो पहचान से जो प्रेम हुआ है वो तो गुण का प्रेम है ना, गुण का प्रेम है। और गुण देख लिया है, प्रकट गुण को देखा है, तो विश्वास आया है, विश्वास पूर्वक का प्रेम है। देखिए, हमने हमारे एक मित्र होते हैं, घनिष्ठ परिचय होता है, जानते हैं कि उतना उदार है कि आज तक उसने लाखों रुपया ऐसे दे दिया है। जो भी उनके घर आता है जरूरतमंद दे देता है, अपना कुछ भी हो वो दे देता है। देखता नहीं है कि मेरा बाद में क्या होगा। ऐसी उदार वृत्ति वाले को जो बराबर पहचानता है, उनके लिए कोई ऐसी बात करें कि भाई हम बैठे थे फलाने फलाने जगह पे, उसमें एक भिखारी आया था, भिखारी ने 10-20 पैसा मांगा, लेकिन ये आदमी कंजूस निकला, 10 मिनट पैसा भी नहीं दिया। हमको तो ये आदमी कंजूस दिखता है, तो वो बात बोलेगा कि देखो भाई मेरे मानने में तो नहीं आता है, तो आपके मानने में आए नहीं है, मैं तो प्रत्यक्ष जो देखा हुआ मैं बता रहा हूं, फिर क्या करोगे। देखो भाई तुम्हारा देखा देखने में कुछ भूल हो सकती है, लेकिन मेरे परिचय में जो मैं मेरी पहचान है परिचय से, उसमें मुझे तो अविश्वास नहीं आता। क्यों? कि मैंने इतने बड़े बड़े दान मेरे हाथ से दिया है इनके पैसे से, अब 10-20 पैसे की क्या हिसाब, क्या हिसाब लगता है इसमें? हो सकता है इसका मूल ठिकाने नहीं हो और बोल दिया होगा चल जा चल निकल जा निकल जा भाई, तो कोई चिंता में बैठा होगा तो नहीं दिया होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कंजूस है। लेकिन कभी ऐसी घटना प्रत्यक्ष की दिखने में आए तो अनजाना है उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन पहचान वाले को अविश्वास कभी नहीं आएगा। ऐसे जो अपने गुरु को पहचानते हैं उसको सम्यक प्रतीति आई है। कैसी प्रतीति आई है? सम्यक प्रतीति आई हो और अचल प्रेम पैदा हुआ हो, उसके आगे संसार का कोई प्रसंग का हिसाब किताब नहीं लगता है, संसार की कोई चीज वस्तु का हिसाब किताब नहीं लगता है, कि जिसके आगे वो गौण हो जाए ये कभी नहीं बनता। और ऐसे हुए बिना सही निर्मलता आती, और ऐसे होने से जो निर्मलता आती है वो तो जैसी ज्ञान, जिस ज्ञानी के प्रति उसको जो अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति हुई है ऐसी दशा उनको प्राप्त हो जाएगी। वो बात कृपालु देव ने 194 नंबर के पत्र में कही है, पर लिखा है कि हमारा ऐसा हुआ है और सभी शास्त्रों और आगमों का कहने का लक्ष्य, कहने का इरादा वही है, ऐसा हमको लगता है। बहुत शास्त्र पढ़े थे उन्होंने और शास्त्र का रहस्य को पकड़े थे, तो शास्त्र का रहस्य को भी खोला है। मुमुक्षु को ऐसा कुछ किस प्रकार का पुरुषार्थ जरूरी है कि जो आश्रय और बंध होता है उसकी ताकत को शक्ति को रोक सके। ये इस प्रकार की शक्ति ज्ञानी को होती है, मुमुक्षु को नहीं होती है, क्योंकि मुमुक्षु को एकत्व हो जाता है और ज्ञानी को भिन्नत्व रहता है। आश्रम के परिणाम बंध के परिणाम से ज्ञानी अपना भिन्न अनुभव करता है, जबकि मुमुक्षु को एकत्व हो जाता है। निरस्ता दोनों में होती है, लेकिन जाति भेद है। मुमुक्षु की निरस्ता की डिग्री कुछ अलग है, ज्ञानी की निरस्ता की डिग्री कुछ अलग है, उसमें बड़ा अंतर है। इसलिए इस प्रकार की शक्ति ज्ञान दशा में होती है, मुमुक्षु दशा में नहीं होती। जो सुबह आया ना अनुभव प्रकाश में, वो ज्ञान दशा के बाद चली है, मुमुक्षु दशा के नहीं चली है।
दो सब प्रकार के दोष जो है वो उठने ही बंद हो
जाएंगे, तो उठेगा ही नहीं, मुमुक्षु को अस्तित्व ग्रहण होने के बाद परिणाम में रस नहीं आता, विभाव परिणाम में रस नहीं आता। तो अस्तित्व ग्रहण के पहले ऐसा किस प्रकार का पुरुषार्थ करता है कि जिससे परिणाम रस बिना का हो गए। रस बिना का परिणाम परिभ्रमण की चिंता से हो जाता है, प्रारंभ यहाँ से होता है। कोई भी चिंता होती है, कोई आदमी मिष्ठान का जीवन खाना खा रहा है और अच्छी अच्छी चीज जो उसको पसंद है वही वही खा रहा है, उसमें आया टेलीफोन कि आपके ऑफिस में इनकम टैक्स वाले रेड लेकर के आ गए हैं और वहां से आपका घर का पता लेकर के पूरी टीम के कुछ लोग आपके घर भी पहुंच रहे हैं। हम बाजू वाले, बाजू के ऑफिस वाले आपको यह समाचार दे रहे हैं, तो खाने में कितना रस आएगा? बुखार आ जाएगा। संसार के उदय की एक चिंता भी खाने का रस को मारती है, हाँ? तो फिर आत्मरस की आत्मा की चिंता, ये अनात्मा की चिंता थे, जड़ की चिंता थे, ये आत्मा की चिंता करने वाले को रस कहां से आएगा खाने पीने में? उसको खान पीन में कोई रस आने वाला नहीं, वो चिंता में डूब गया है। जब तक तो वेदना चलती है, यहां से निरस परिणाम होते हैं, फिर आगे जितने भी स्टेज पे वो आगे बढ़ता है उसकी निरसता बढ़ती जाती है। इस प्रकार से अस्तित्व ग्रहण पहले भी निरसता जो है वो आती है और बढ़ती भी जाती है, हो सकता है अस्तित्व ग्रहण में तो और निरसता बढ़ती है, फिर ज्ञान दशा में और निरसता बढ़ती है, फिर ऊपर ऊपर की दशा में भी और निरसता बढ़ती है, तो फिर पर पदार्थ के ग्रहण में भी तफावत हो जाता है, अंतर हो जाता है, तो वहाँ बाह्य त्याग दिखने में आता है ऊपर के गुण स्थानों वालों का। यहाँ तक रखें।